आज है 31 जनवरी दिन मंगलवार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का नमस्कार। आर्थिक सर्वेक्षण कहता है नोटबंदी के कारण अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ेगी, पैदावार पर असर पड़ेगा।
आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है कि नोटबंदी का असर अर्थव्यवस्था में ऊपर पड़ा। सरकार अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसका असर बहुत जबरदस्त पड़ रहे हैं।
जमात उद्दावा के हाफिज सईद की नजरबंदी को पाकिस्तानी फौज ने नीति संबंधी फैसला बताया।
जहाँ तक हाफिज सईद पे पाबंदी का ताल्लुक है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो स्टेट ने नेशनल इंटरेस्ट में लिया है।
ट्रंप का विधेयक पास हुआ तो अमेरिका में रोजगार वीजा के लिए $125,000 देने होंगे। और पंजाब के जट यमला की पहचान बनी, इस आवाज की बात भी होगी कार्यक्रम में, लेकिन विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार, निखिल रंजन से। भारत का आर्थिक विकास दर मौजूदा वित्तीय साल में घटकर 6.5% रहने की उम्मीद है। ये आर्थिक आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किए गए हैं। इसके मुताबिक अचानक हुई नोटबंदी के कारण आर्थिक विकास दर में 0.5% की कमी आई है। आर्थिक सर्वेक्षण में टैक्स की दरों में बड़ी कटौती की मांग की गई है। बजट से ठीक पहले आए आर्थिक सर्वेक्षण में न सिर्फ आयकर की दरों में बल्कि कॉरपोरेट टैक्स की दरों में भी कटौती की मांग है। इसके साथ ही सबके लिए न्यूनतम आय की भी मांग रखी गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.6% की दर से बढ़ी थी और इस साल ये दर 7.1% रहने की उम्मीद जताई गई थी। इस साल की गिरावट के बाद अगले वित्तीय वर्ष में आर्थिक विकास दर फिर से बढ़ने की उम्मीद भी आर्थिक सर्वेक्षण में की गई है। पाकिस्तान की सेना ने कहा है कि एक नीतिगत फैसले के तहत जमात उद्दावा के प्रमुख हाफिज सईद को नज़रबंद किया गया है। 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों को अमेरिका में आने पर लगी रोक के बाद ये खबर भी आई थी कि पाकिस्तान भी इन देशों में शामिल किया जा सकता है। कल पाकिस्तानी सेना ने हाफिज सईद को उनके घर में नज़रबंद कर दिया। इसके तुरंत बाद हाफिज सईद की ओर से जारी एक वीडियो बयान में कहा गया कि ये कदम अमेरिका और भारत के दबाव पर उठाया गया है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि ये एक नीतिगत फैसला है जो सरकार ने देश हित में लिया है। कई सारी संस्थाएं हैं जिन्हें अपनी भूमिका निभानी होती है। इधर भारत सरकार का कहना है कि हाफिज सईद के मुंबई हमलों में शामिल होने के सबूत हैं। भारत के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है,
भारत की तरफ से तो प्रेशर लगातार दे रहे हैं। हम दुनिया को भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से
भारत लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। हम दुनिया को बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान न सिर्फ हाफिज सईद को बल्कि दूसरे चरमपंथियों को पनाह दे रहा है, मगर सब तरफ से दबाव पड़ा तो पाकिस्तान ठोस कदम उठाने पर मजबूर होगा। क्षमा कीजिएगा, किरण रिजिजू की आवाज बहुत साफ नहीं थी। अमेरिका में H-1B वीज़ा लेकर आने वाले कामगारों की तनख्वाह दुगुनी करने जैसी शर्त लाने के प्रस्ताव के बाद भारत की शीर्ष IT कंपनियों के शेयरों के दाम 5% तक गिर गए हैं। भारतीय IT कंपनियां हर साल H-1B प्रोग्राम के तहत हजारों IT पेशेवरों को अमेरिका भेजती हैं। इसी प्रोग्राम के तहत माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के लिए तकनीकी दक्षता वाले विदेशी कामगारों को नौकरी पर रखना मुमकिन होता है। राष्ट्रपति ट्रंप का प्रशासन H-1B वीज़ा के लिए नियमों को बदलने की तैयारी में जुटा है। इस बदलाव का मकसद अमरीकी कंपनियों को पहले अमरीकी लोगों को नौकरी देने के लिए तैयार करना है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। यूक्रेन का कहना है कि जंग तेज होने के कारण पूर्वी औद्योगिक शहर अवदिवका में मानवीय संकट गहराने लगा है। कड़ाके की सर्दी में हजारों लोग बिना बिजली पानी के रहने पर मजबूर हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एक संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन इलाके में मौजूद BBC संवाददाता का कहना है कि गोलाबारी लगातार जारी है। यूक्रेन ने रूस समर्थित अलगाववादियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि यूक्रेन समर्थित चरमपंथियों ने मिन्स्क शांति समझौते को बेअसर करने के लिए युद्ध शुरू किया है। इस बारे में पक्की खबरें हैं कि सोमवार को स्वतंत्र हथियारबंद संगठन ने डोनबास रिपब्लिक के नियंत्रण वाले इलाकों पर हमला किया। उन्होंने यूक्रेनी सेना के टैंकों की मदद से संपर्क रेखा पार कर ली। कुल मिलाकर इस तरह के हमलावर कदम मिन्स्क समझौते के लक्ष्यों और उद्देश्यों को कमजोर करने के लिए उठाए जा रहे हैं। साफ जाहिर है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति मिन्स्क समझौते को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के शब्द। और इराकी विमानों ने इस्लामिक कब्जे के स्टेट के कब्जे वाले मूसल शहर के पश्चिमी इलाकों में लाखों की संख्या में पर्चे गिराए हैं। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। अगले साल के लिए देश का खर्चा पानी तय करने का दिन आ गया है, यानी केंद्र सरकार कल लोकसभा में 2017-18 के लिए आम बजट पेश करेगी। इससे पहले आज 2016 और 17 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई। ये दस्तावेज बताता है पिछले साल अर्थव्यवस्था किस हाल में थी और आगे क्या होगा। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी का भारी असर पड़ेगा। इस वित्त वर्ष में विकास की दर 7.6% से गिरकर 6.5% रह गई है। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि नोटबंदी के कारण मांग कम हो जाएगी, खेती की उपज पर भी असर पड़ेगा। इसको और समझेंगे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक प्रोंजय गुहा ठाकुरता से, पर पहले रिपोर्ट की खास बातें बता रहे हैं विनीत खरे।
आर्थिक सर्वे देश की आर्थिक हालत को बयां करता है। इसमें देश के विभिन्न सेक्टर का ब्यौरा होता ही है, साथ में कुछ सिफारिशें भी होती हैं, हालांकि उन्हें मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल आर्थिक प्रगति में 1.1% की भारी गिरावट दर्ज की गई, हालांकि इसमें अगले साल सुधार की बात सर्वे में की गई है। आइए जानते हैं इस सर्वे की मुख्य बातें। इस वित्तीय वर्ष आर्थिक प्रगति 6.5 रही, लेकिन 2017-18 वित्तीय वर्ष में यह दर 6.75 और 7.5 के बीच रह सकती है। सर्वे में सरकार को व्यक्तिगत आयकर, रियल स्टेट स्टैंप ड्यूटी कम करने की सलाह दी गई और कहा गया कि आयकर के दायरे को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। सर्वे के अनुसार चालू वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4.1% रहेगी। वर्ष 2015-16 में यह दर 1.2% रही थी। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष 7.4% थी, इस वित्तीय वर्ष इसके 5.2% तक गिरने की आशंका है। सर्वे के अनुसार जिस रफ्तार से कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया जा रहा है, इसे तेज करने की जरूरत है। सर्वेक्षण के अनुसार कर प्रशासन में सुधार होना चाहिए ताकि जवाबदेही बढ़े और जिस तरह लोग काम में अधिकारों के नाम पर रुकावट डालते हैं वो ना हो। सर्वे के मुताबिक नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर 1/4 से लेकर 0.5% का फर्क पड़ा है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST जैसे संरचनात्मक सुधारों से प्रगति दर का आंकड़ा 8-10% तक जा सकता है। सर्वे के मुताबिक नोटबंदी के तजुर्बे से सीख ली जा सकती है। एक तर्क के मुताबिक नोटबंदी धन को बांटने का तरीका है और इसकी मदद से सरकार के रास्ते अवैध धन को अमीर लोगों से गरीबों तक ले जाया जा सकता है, लेकिन छोटे समय में इसका प्रतिकूल असर अर्थव्यवस्था के उन हिस्सों पर पड़ता है जहां नकदी की मात्रा ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक नोटबंदी से कुछ कृषि उत्पाद जैसे चीनी, दूध, आलू और प्याज की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि करों की वसूली के दौरान लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। विनीत खरे, BBC दिल्ली।
आर्थिक सर्वेक्षण को और समझने के लिए कुछ देर पहले मैंने बात की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक प्रोंजय गुहा ठाकुरता से और पूछा कि रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है।
ये आर्थिक सर्वेक्षण साफ साफ कह रहा है कि नोटबंदी का असर अर्थव्यवस्था में ऊपर पड़ा, मगर सरकार अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसका असर बहुत जबरदस्त पड़ रहे हैं। मान लिया कि हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जनवरी महीना में कहा था कि 7.1% बढ़ेगा, आज वो कम होके 6.5% हो गया, तो समय बताएंगे सचमुच आज भारत सरकार और वित्त मंत्रालय का और हमारे जो आर्थिक सलाहकार है वित्त मंत्री के, उनका इतना जो ऑप्टिमिज्म है ये वास्तव के थोड़ा बहुत हटके बोल रहे हैं सारी चीज।
तो अगले जो वित्त वर्ष है उसके लिए कह रहे हैं कि 6.75 या 7.5% तक जा सकती है, ऐसा आशावाद वो दिखा रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि इस नोटबंदी की वजह से चीनी, दूध, टमाटर, आलू जैसी जो चीज़ें हैं, प्याज, इनकी सप्लाई में असर पड़ेगा, इनकी सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि लोगों ने बोया ही नहीं है।
देखिए, एक साल के बाद क्या होने वाले हैं ये सिर्फ समय बताएंगे।
तो ये आर्थिक समीक्षा का तो यही मसला है ना कि वो अगले साल का ही बताता है।
देखिए, आर्थिक समीक्षा का ये भी है कि जो पिछले साल में हुआ इसका एक विश्लेषण करके बताया, और सरकार जैसे कह रहे हैं ये नोटबंदी हाँ कुछ अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ा, आने वाले सालों में बुरा स्थिति से अच्छी स्थिति होंगे। देखिए, एक चीज कहा, जो हमारे देश में जो गरीब जो राज्य है, जिस तरह से केंद्र सरकार का पैसा वितरण हो रहा है, ये गरीब राज्य पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब है गरीब और अमीर के बीच जो असंतुलन है जो वो कम नहीं हो रहे। बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए ये संपत्ति का अधिकार क्या होना चाहिए और निजी क्षेत्र को क्या करना चाहिए, निजीकरण क्यों नहीं हो रहा, ये मान लिया, और ये भी कहा कि जो एसेंशियल सर्विसेज है ये ठीक तरह से अच्छी तरह से इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण बार बार कह रहे हैं कि आप सरकारी कंपनी को निजीकरण कीजिए, मगर आप कर नहीं पा रहे, क्योंकि जो आपका अर्थशास्त्री कुछ कह रहे हैं और जो राजनीतिक जो वास्तव है इसमें कुछ फर्क है।
अच्छा, ये जो मेरी चीज समझ में नहीं आई है, एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो खेती की उपज है, टमाटर है, प्याज है, दूध चीनी वगैरह, वो उस पर सप्लाई पर असर पड़ेगा, मतलब सीधे सीधे महंगी होंगी। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो फार्म सेक्टर की ग्रोथ है वो 1.2% बढ़ जाएगी और कुल मिला के 4.1% हो जाएगी।
देखिए, 2 साल लगातार कृषि क्षेत्र में खराब बारिश होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। अभी इनका दाम, इनका कीमत कम था। क्यों कम था? क्योंकि नोटबंदी के कारण लोग खरीद नहीं पा रहे थे, और ये सब जो बेचने वाले थे वो बोला किसी दाम में हम बेच देते हैं, नहीं तो ये सड़ जाएगा। ये स्थिति बदलने वाले हैं, मतलब महंगाई के एक चाप आने वाले हैं।
अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी के असर के बारे में बात कर रहे थे प्रंजय गुहा ठाकुरता। नोटबंदी जैसे कड़े फैसले का चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल आप सभी के मन में होगा, मेरे मन में भी है। लखनऊ में पत्रकार समीर आत्मज मिश्र इन दिनों पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर इलाके में हैं, और उन्होंने वहाँ ये सवाल पूछा स्थानीय लोगों से जो कुछ ही दिनों में मतदान करने वाले हैं।
गाजीपुर ज़िले का ये गहमर गांव है, और गहमर गांव एक ऐसा गांव है कि उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि बताया जाए कि वो किस ज़िले का है। कहा यह जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा ये गाँव है। अगर मैं अपनी बात बताऊँ, इन लोगों से बात करने से पहले मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ कि हम आए हैं गाजीपुर से। गाजीपुर से दूरी कितनी है यहाँ की?
35-40 किलोमीटर
यहाँ की दूरी है गाजीपुर से, और मुझे यहाँ तक आने में लगभग 3.5-4 घंटे लगे हैं। तो ये बताएं कि ये मेरा ही अनुभव है कि आप लोगों का?
नहीं, इस समय गाजीपुर मुख्यालय जाने के लिए हमारे पास ट्रेन रोड की हालत बहुत बदतर हो चुकी है। रोड बहुत बदतर है, लिंक रोड से हम लोग जाते हैं 3-3.5 घंटा लगता है। बस वगैरह कुछ नहीं है, 3 साल हो गया, 3 साल से बस का साधन नहीं है।
आप लोग जब जाते हैं गाजीपुर मुख्यालय तो कैसे जाते हैं?
हम लोग बाइक से जाते हैं या पैदल जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं।
ट्रेन से दिलदार नगर, वहाँ से जो है एक ताड़ी घाट लिंक रेलवे स्टेशन है जिसका भी मनोज सिन्हा जी ने उद्घाटन किया। ताड़ी घाट उतर के और उसके बाद हम लोग बाई टेम्पू गंगा पार उस पार जाके शहर जाते हैं, यानी समय हमारा 3 घंटा लग जाता है।
अच्छा, यहाँ एक चीज़ और आपने याद दिला दिया कि ये रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का भी इलाका है।
जी, हाँ।
और 35 किलोमीटर की दूरी आपको ट्रेन में 3 जगह बदलनी पड़ती है?
2 जगह,
यानी सीधी ट्रेन सेवा भी मुख्यालय से नहीं जुड़ी है?
अभी नहीं जुड़ी है।
आधा हमारे गांव के मरीज मर गए रोडे पर, इसलिए कि रोड नहीं है किस तरह हम लेकर बनारस जाए बेचू में।
एम्बुलेंस बुलाने पर
आती है लेकिन
सड़क पे ही, लेकिन सड़क विहीन है यहाँ पर। जो मरीज को धक्का नहीं लगना चाहिए उस मरीज को इतनी गचका झेलना पड़ता है, उस मरीज की मर्ज और बढ़ जाती है।
सबसे बड़ा हमारे यहाँ भी जो पब्लिक का सबसे रोना है तो सड़क मुख्यालय।
हमारे यहाँ रोड का मुद्दा है, हॉस्पिटल पर कोई ना डॉक्टर है, कन्या इंटर कॉलेज है वहाँ पर कोई टीचर नहीं है, यहाँ पर 2-2 डिग्री कॉलेज है, कोई पढ़ाई लिखाई यहाँ पर नहीं है टीचर के बिना, सब कुछ है यहाँ पर। स्कूल रहते हुए बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे टीचर के बिना।
अच्छा, जो नोटबंदी हुई थी तो उसमें उसका असर अभी भी दिख रहा है कि नहीं?
आज की स्थिति, आज 31 तारीख है महीने का, लास्ट डेट साल का जनवरी महीने का, आज जो है मैन ब्रांच से मात्र 200 लोगों को टोकन दिया गया है, जबकि वहाँ अकाउंट धारक 20,000 हैं।
उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से बात कर रहे थे समीर आत्मज मिश्र। ये BBC हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर, मैं हूं राजेश जोशी। और पाकिस्तान में जमात उद्दावा के हाफिज सईद को कल से सरकार ने नज़रबंद कर रखा है। आप जानते ही हैं कि हाफिज सईद को भारत 2006 में मुंबई पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार मानता है, हालांकि सईद इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। अब उनके समर्थकों ने इस नज़रबंदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। फौज ने हाफिज सईद की नज़रबंदी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल का जवाब भी दिया। मैंने इस बारे में इस्लामाबाद फ़ोन करके BBC उर्दू के हारून रशीद से और जानकारी ली।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उनसे कल जो जमात दावा के नेता हैं हाफिज सईद, उनकी नज़रबंदी के बारे में भी सवाल किया, तो पूछा कि क्या जो सेना है वो उस पर ऑन बोर्ड है और वो इसमें राजी है। हाफिज सईद की डिटेंशन के बारे में मेजर जनरल आसिफ गफूर का ये कहना था।
जहां तक हाफिज सईद पे पाबंदी का ताल्लुक है, ये एक पॉलिसी डिसीजन है जो स्टेट ने नेशनल इंटरेस्ट में लिया है। इसमें बहुत सारे इदारों को अपना अपना काम करना होगा। कल ये खबर आई है, आने वाले दिनों में आपको इससे मुतल्लिक मजीद जो है वो तफसीलात पता चलती रहेंगी।
जिससे लगता है कि शायद ये जो शुरू हुई है क्रैक डाउन इंडियन जो मुखालिफ तंजीमें हैं दल हैं उनके खिलाफ, शायद इसमें मजीद भी आने वाले दिनों में कुछ और कार्रवाइयाँ भी हों।
लेकिन हारून साहब ये भी सच है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, सरकार ने जमात दावा या हाफिज सईद के खिलाफ या ऐसी जो संगठन हैं उनके खिलाफ पहले भी कार्रवाइयाँ की हैं, यानी जनरल मुशर्रफ के दौरान भी इस तरह की कार्रवाइयाँ काफ़ी हुई थीं, उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता नहीं दिखा। अब इस बार जब ये इनको नज़रबंद किया गया हाफिज सईद को, तो क्या उम्मीद करें पूरी दुनिया के लोग और हिंदुस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग कि वाकई इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है?
राजेश साहब, काफ़ी मुश्किल सवाल है। और यकीनन हाफिज सईद जो हैं वो पहले भी काफ़ी मर्तबा नज़रबंद हुए, काफ़ी लंबे अरसे तक नज़रबंद भी रहे, फिर अदालतों में गए और वहाँ उन्हें रिलीफ मिला क्योंकि सरकार उनके खिलाफ सबूत सामने नहीं ला सकी थी। तो इस मर्तबा एक फिर उनको नज़रबंद किया गया, वही कार्रवाई जो पहले होती रही है उनके खिलाफ दोबारा की गई है। तो इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है कि क्या ये माजी से मुख्तलिफ होगी या नहीं होगी, ये तो आगे चल कर ही पता चलेगा। लेकिन अचानक इस तरह से इसका हो जाना, इस पर काफ़ी लोगों को यहाँ पर चिंता है और एक सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अब क्यों ये एकदम किया गया। पहले तो ये हुआ था कि जब मुंबई के हमले हुए तो उसके फौरन बाद यकीनन पाकिस्तानी सरकार प्रेशर में थी तो उनको लेके आई, अभी इस तरह का कोई प्रेशर भी नहीं है तो ये क्या वजह है?
अगर हाफिज सईद का बयान जो टेलीविज़न में और दूसरी जगहों पर आया था, वो तो कह रहे हैं कि अमेरिका और हिंदुस्तान के दबाव में ये फैसला सरकार ने किया है, और उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे, इसका पुरजोर इसकी मुखालफत करेंगे।
जी, वो तो आज भी प्रदर्शन उन्होंने किए हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया है और इसे गैर कानूनी करार दिया है। और ये जो बात आपने हाफिज सईद की कही, वो कल रात अपनी डिटेंशन से पहले उन्होंने ये मीडिया से बात करते हुए कही थी, और इसी से कुछ शायद इशारा भी मिलता है कि पाकिस्तानी सरकार पर यकीनन भारत का तो एक कांस्टेंट प्रेशर था ही था, लेकिन ये जो अभी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आई है, तब्दीली आई है, और जो नए प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हैं, उनकी पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी जो है वो पूरी तरह से वाजे भी नहीं है, और फिर वो अपने जो फैसले लेते हैं उनमें काफ़ी एग्रेसिव भी हैं। तो शायद अमरीकी प्रेशर को प्रीएम्प्ट करने की खातिर, क्योंकि बात यही हो रही है कि पाकिस्तान का जिक्र क्यों नहीं हो रहा, बाकी देशों पर पाबंदियां लगी हैं, पाकिस्तान को उसमें शामिल क्यों नहीं जाता, तो उसको प्रीएम्प्ट करने की खातिर और उनको ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तानी सरकार जो जो मसाइल हैं, जो कंट्रोवर्सीज हैं, उन पर काम करने के लिए तैयार है।
इस्लामाबाद से बीबीसी उर्दू के हारून रशीद। इधर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने पाकिस्तान के कदम पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि हाफिज सईद और उन जैसे लोगों के खिलाफ पहले भी पाकिस्तान में कल जैसी कार्रवाई की जा चुकी है। पाकिस्तान की गंभीरता तभी सिद्ध होगी जब वो उन्हीं के शब्दों में, यानी विकास स्वरूप के शब्दों में, मुंबई के आतंकवादी हमलों और सीमा पार आतंक फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करे। ये थी विकास स्वरूप की बात। ये बीबीसी लंदन है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। और अब अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा विधेयक पेश किया है जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। H-1B वीज़ा यानी अमरीका में जाकर रोजगार के वीज़ा की कीमत अब $60,000 से बढ़ाकर $130,000 करने का प्रावधान है। आइए बात करते हैं सीधे वॉशिंगटन DC में हमारे संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से, जो टेलीफोन लाइन के जरिए हमारे संपर्क में है। ब्रजेश, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे फैसलों पर बाद में बात करेंगे, पहले ये जो H-1B वीज़ा है, ये जो महंगा कर दिया गया है, इसकी क्या वजह है?
नहीं राजेश, यहाँ पर शायद कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है। पहली बात कि कोई अभी ना तो महंगा किया गया है,
यानी विधेयक
स्पष्ट कर दूं क्योंकि काफी, जी हाँ, कोई विधेयक नहीं पेश हुआ है ट्रंप की तरफ से। पिछले हफ्ते कैलिफोर्निया की जो सेनेटर हैं उन्होंने, वो भी डेमोक्रेट सेनेटर, उन्होंने H-1B में सुधार के लिए एक विधेयक पेश किया है कांग्रेस में। ट्रंप प्रशासन की तरफ से कोई विधेयक नहीं आया है, ट्रंप प्रशासन की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आने की बात है, चर्चा चल रही है कि वो H-1B वीजा नियमों को और सख्त करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, वहां एक और स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि वीजा की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बात यह हो रही है कि जिस वेतन पर अमरीकी इंजीनियरों को बहाल किया जाता है, उसी वेतन पर अगर आपको अमरीकी इंजीनियर ना मिले तब बाहर से बाहर के देशों से इंजीनियर्स को लाया जाए। तो वहां जो 60,000 और 130,000 डॉलर की बात हो रही है वो बात सामने आई है। और उसका जैसे पहले 60,000 डॉलर मिलते थे लेकिन अमेरिका में उसी काम के लिए 130,000 डॉलर आपको देने पड़ेंगे अगर आप किसी अमेरिकी नागरिक को यहाँ पर बहाल करते हैं उसी पद के लिए। और ये प्रावधान है, इनका नाम है मैं बताता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव जोई लॉफ्ग्रेन जिन्होंने ये विधेयक पास किया है। और आमतौर पर जो प्रशासन की तरफ से विधेयक नहीं पास किया जा, ये पारित होता है, ये पेश किया जाता है।
हालांकि ब्रिटिश जी यहाँ भारत में कॉरपोरेट जगत में और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने ये कहा है कि हमने अपनी चिंता से ट्रंप प्रशासन को अवगत करा दिया है।
जी हाँ, उस विधेयक पर उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की है कि जो कि 24 तारीख जो कि एक सोमवार था उस दिन पेश हुआ, उस दिन सामने आया था। और ये मुमकिन है कि कल संसद में कांग्रेस में वो सामने आया हो लेकिन ट्रंप प्रशासन की तरफ से नहीं, ट्रंप की तरफ से और वो भी अभी पेश ही हुआ, सामने कागज ही सामने आया है
और इतनी हलचल पूरी दुनिया में मच गई।
जी हाँ बिल्कुल, उसको जो H-1B वीजा आप समझ सकते हैं कि काफी बड़ी कंपनियों के काफी स्टेक्स हैं इसमें और इसलिए उसको लेकर के एक घबराहट का माहौल है। लेकिन अभी जिस बात का यहाँ पर डर है वो है कि इसी H-1B वीजा पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो ट्रंप अपने आने ऑफिस में आने के बाद से लगातार ये करते रहे हैं वो साइन कर सकते हैं, वो भी उन्होंने वो किया नहीं है, उस बात को लेकर हलचल है। और यहाँ की जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उनमें भी काफी चिंता है कि क्या आने किस तरह की बातें होंगी उसमें।
बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे वॉशिंगटन DC से हमारे संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। धर्मेंद्र की फिल्म प्रतिज्ञा का वो गाना तो आपने सुना ही होगा, मैं जट यमला पगला दीवाना। आखिर ये जट यमला है क्या? जट यमला वो पंजाबी किरदार है जो तुर्रेदार पगड़ी, लुंगी और जूतियां पहनकर मस्त मलंग भंगड़ा करता है। पर इस जट यमले को मशहूर करने वाले शख्स का नाम है उस्ताद लाल चंद यमला जट। हाल ही में हमारे साथी सलमान रावी चुनाव के सिलसिले में पंजाब में थे जहां उन्होंने उस्ताद लालचंद के परिवार वालों से मुलाकात की। सुनिए ये रिपोर्ट।
यह है उस्ताद लाल चंद यमला जट की कुछ यादगार प्रस्तुतियों में से एक। उस्ताद लाल चंद यमला जट ने न सिर्फ पंजाबी लोक संस्कृति को पूरे विश्व भर में एक अलग पहचान दी बल्कि उन्होंने यमला जट के पहनावे को भी अलग पहचान दी। जिस तुर्रे पगड़ी, जूतियां और धोती पहने हुए यमला जट की कल्पना की जाती है उसका श्रेय उस्ताद लाल चंद यमला जट को ही जाता है। लाहौर के पास जन्मे उस्ताद भारत के विभाजन के बाद लुधियाना के सरकारी बस पड़ाव के सामने बसी रेफ्यूजियों की कॉलोनी में रहने लगे। वो पाकिस्तान से अपने पीर कटोरे शाह बाबा के मजार की मिट्टी लेकर आए थे। उन्होंने लुधियाना में अपने पीर का मजार बनाया और वहीं पर तुम्बी का रियाज शुरू किया मगर चिमटे पर उनकी संगत करने वाले आलम लोहार उनसे बिछड़ गए क्योंकि वो पाकिस्तान में ही रह गए थे। मगर पंजाब में कला और संस्कृति से जुड़े लोगों को मलाल है कि राज्य में जिस किसी की भी सरकार आई उसने कभी ना तो उस्ताद लाल चंद यमला जट की परंपरा को आगे बढ़ाने की सोची और ना ही उनके परिवार को सहायता देने की। उस्ताद की बहू यानी उनके बेटे जसदेव कुमार यमला जट की पत्नी सरबजीत कहती हैं,
हमारे फादर इन लॉ जब बीमार थे तब गवर्नर साहब भी घर में आए हुए थे पर हमारे फादर साहब ने कुछ नहीं उनसे मांगा और एक टेलीफोन
मतलब
दिया था।
ये जट यमला जो है हाँ, वो बीमार जब पड़े हाँ,
तो गवर्नर साहब आए थे उनका पता लेने, उनकी वाइफ भी आई थी पर उन्होंने पूछा भी आपको क्या चाहिए, लेकिन हमारे जो मेरे हस्बैंड है ये चारों भाई इंग्लैंड में गए हुए थे तो कहने लगे मैं किसी के घर फ़ोन सुनने नहीं जा सकता, मेरे को एक फ़ोन लगा दीजिए। और कुछ नहीं मांगा उन्होंने, पर जो फोन भी लगा उनकी डेथ के एक महीने बाद लगा।
सरकारी उदासीनता से दुखी सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने मिलकर खुद ही उस्ताद यमला जट की न सिर्फ मूर्ति बनाई बल्कि बस अड्डे के सामने उनकी याद में एक पार्क भी बनवाया जहां लोग संगीत के कदरदान अपना समय बिताने आते हैं।
आवे बना ले सगना दा गाना, गाने ते फुम्मन जा, मेरी बनेरी दे।
वरिष्ठ पत्रकार नदीम ने बीबीसी को बताया कि किस तरह सामाजिक संगठनों की पहल पर लुधियाना के बस स्टैंड के पास उस्ताद की याद में पार्क बनाया गया।
अफसोस ये कि उस्ताद लालचंद यमला जट जब नहीं रहे उसके बाद इनके नाम लेवा नहीं रहे, सरकार ने इन्हें बुला दिया और एक तरीके से इन्हें बिसारा गया। फिर एक इनका छोटा सा बुत यहाँ बस अड्डे के करीब लगाया जिसे बाद में इस पार्क में शिफ्ट किया और इस पार्क को नाम दिया गया यमला पार्क।
तेरे इत्थे बंदे आदम खाने ने सज्जन नाम वध के ठग सियाने ने।
ये हैं उस्ताद के पोते सुरेश यमला जट जो तुम्बी और लोक गायकी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि सरकार परिवार की मदद ना करे तो ना सही, मगर वो चाहते हैं कि जिस कला ने पंजाब की लोक गायकी को पहचान दिलाई सरकार कम से कम उसको तो जिंदा रखे।
लोगों को टाइम नहीं लग्या, उन्होंने किसी तरह की कोई उस्ताद लालचंद यमले जट की साड़ी मदद चलो की करनी है, पर उस्ताद लालचंद यमले जट की मैं बेनती करता कि उन्होंने मदद की जाए, उन्होंने अकैडमी बनाई जाए।
पंजाब में विधानसभा के चुनावों का प्रचार अपने पूरे शबाब पर है, मगर इस चुनावी शोर शराबे के बीच पंजाब के लोक संगीत और संस्कृति की ये आवाज यानी उस्ताद लालचंद यमला जट का तुम्बी वादन और गायकी दब कर रह गई है। सलमान रावी, बीबीसी लुधियाना।
गर्ज बिना नहीं रिश्तेदारी नहीं कोई कोट कबीला।
उस्ताद लालचंद यमला जट, उनके बारे में रिपोर्ट कर रहे थे सलमान रावी। और अब वक्त है खेल समाचारों का।
खेल की दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं सुमिरन प्रीत कौर। इंग्लैंड क्रिकेट टीम इस वक्त भारत में है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज हुई, वनडे इंटरनेशनल मैच की सीरीज हुई और अब T20 मैच की बारी। कल इस पूरी श्रृंखला का आखिरी मैच होगा और T20 सीरीज का ये एक निर्णायक मैच है क्योंकि सीरीज 1-1 से बराबर है। जहां पहला मुकाबला इंग्लैंड ने अपने नाम किया, वहीं दूसरा T20 मैच जो नागपुर में हुआ वो भारत ने अपने नाम किया। अब कल मुकाबला है बेंगलुरु में, जिसके बारे में बता रहे हैं पूर्व क्रिकेटर विजय दहिया।
आखिरी मैच है श्रृंखला, उसके ऊपर निर्भर करती है T20 की कौन जीतेगा इसको। और अगर भारतीय टीम कोशिश करेगी भी ना कि अगर बैंगलोर के अंदर एक ऐसा विकेट मिले जो थोड़ा सा स्लो हो, स्पिनर्स को मदद करे, तो वहाँ का एक तो ग्राउंड इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें आप जो बाउंड्री लाइन है उसको बहुत पीछे नहीं ले जा सकते क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। ये जो ग्राउंड है ये नया ग्राउंड बना है तो यहाँ पर जगह बहुत ज्यादा थी पीछे ले जाने की। और दूसरी चीज ये है कि वो हाई ऑल्टीट्यूड पे है, वहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा छक्के लगते हैं, तो वहाँ पर हवा में जो गेंद है ना वो ज्यादा जल्दी से ट्रैवल करती है।
तो कल मुकाबला है भारत और इंग्लैंड के बीच, वहीं दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच होगा साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच डर्बन में।
खेल समाचार सुना रही थी सुमिरन प्रीत कौर। और खेल समाचारों के साथ ही हमारा कार्यक्रम अब अपने अंतिम मुकाम पर है। चलने से पहले आइए सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत का आर्थिक विकास दर मौजूदा वित्तीय साल में घटकर 6.5% रहने की उम्मीद है। ये आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किए गए हैं। इसके मुताबिक अचानक हुई नोटबंदी के कारण आर्थिक विकास दर में 0.5% की कमी आई है। पाकिस्तान की सेना ने कहा है कि एक नीतिगत फैसले के तहत जमात उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को नज़रबंद किया गया है। अमरीका में H-1B वीज़ा लेकर आने वाले कामगारों की तनख्वाह दुगुनी करने जैसी शर्त लाने के प्रस्ताव के बाद भारत की शीर्ष IT कंपनियों के शेयरों के दाम 5% तक गिर गए हैं। यूक्रेन का कहना है कि जंग तेज होने के कारण पूर्वी औद्योगिक शहर अवदिवका में मानवीय संकट गहराने लगा है। और इराकी विमानों ने इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले मूसल शहर के पश्चिमी इलाकों में लाखों की संख्या में पर्चे गिराए हैं। इन पर्चों में मूसल निवासियों से IS के खिलाफ सरकार की निर्णायक जंग के लिए तैयार रहने को कहा गया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचारों के साथ ही हमारा यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, लेकिन देश और दुनिया से आपको जोड़े रखने के लिए हमारी वेबसाइट bbchindi.com आपके साथ है। ज़रूर आइएगा और तमाम तस्वीरें खबरें देखिए। फिलहाल अजीत सारथी हमारे स्टूडियो मैनेजर के साथ मैं राजेश जोशी अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।